जी आकाशवाणी दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के प्रतिबंधों को दूसरे चरण में बदलने की अनुमति दी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में नवनिर्मित सड़क सह रेल वाहन का निरीक्षण किया। साहित्य अकादमी के पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कल से शुरू होगा और तीन दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव कल से नई दिल्ली में शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के प्रतिबंधों को दूसरे चरण में बदलने की अनुमति दे दी है। ये निर्णय वायु गुणवत्ता में हाल में हुए सुधार के बाद लिया गया। न्यायालय ने अपर महान्यायवादी ऐश्वर्या भाटी की इस दलील पर ध्यान दिया कि 30 नवंबर से औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से नीचे चल रहा है। न्यायालय ने आयोग को एहतियात के तौर पर ग्रेप के तीसरे चरण के अंतर्गत कुछ उपायों को शामिल करने पर विचार करने की सलाह दी। न्यायालय ने कहा कि यदि सूचकांक 350 से अधिक है तो ग्रेप के तीसरे चरण को लागू किया जाना चाहिए और यदि ये 400 से अधिक होता है तो ग्रेप के चौथे चरण को फिर से लागू किया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आज चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में श्री गोयल ने चुनावी राजनीति से हटने का कारण अपनी उम्र को बताया। हालांकि उन्होंने पार्टी की सेवा जारी रखने का आश्वासन दिया। इस बीच श्री केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री गोयल का चुनावी राजनीति से अलग होने का निर्णय हम सभी के लिए भावुक क्षण है। आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिला मतदाताओं तक दिल्ली सरकार के कार्यों को पहुंचाने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के अंतर्गत सभी 70 विधानसभाओं में छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी पार्टी की महिला शाखा को मिली है। इसमें महिलाओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने महिला शाखा के 5000 समूह बनाए हैं। प्रत्येक समूह में 8 महिलाएं शामिल हैं। हर समूह को 10 महिलाओं से संवाद की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने विधानसभा सत्र में जनता से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट को भी सरकार ने सदन के पटल पर नहीं रखा। श्री गुप्ता ने कहा कि सरकारी आवास, शिक्षा, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
जो सवाल दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी और आतिशी मार्लिना से हमारे हैं, दिल्ली की जनता के हैं, वो वैसे ही खड़े हैं। हमें उम्मीद थी कि सदन में जिन पर आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला या जिन मुद्दों से वो भाग रहे हैं, जनता के वो सवाल हैं, जनता की जुबान पर हैं, घर घर में जिसकी चर्चा हो रही है, ऐसे तमाम मामले उन पर आम आदमी पार्टी भाग रही है।
दिल्ली भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज ऑटो चालक चले भाजपा के संग नामक अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के ऑटो चालकों की सभी मांगों को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। श्री सचदेवा ने ऑटो चालकों से आग्रह करते हुए कहा कि स्वच्छ दिल्ली अभियान में योगदान दें।
एक लिफाफा, एक थैली अपनी गाड़ी में रखिए। कोई ऑटो सवारी आपके उसमें बैठती है, कोई पॉपकॉर्न खाता होगा, कोई चिप्स खाता होगा, कुछ खाता होगा, उसको इतना कहना है कि भाई साहब ये रैपर इस थैली में फेंक दीजिए, बच्चे को कहिए सड़क पे ना फेंके। देखिए वो जो अंदर बैठा है वो आपसे सीख के जाएगा और पूरी दुनिया को।
पूर्व विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह शंटी ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान श्री शंटी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि रक्तदान, लावारिस शवों का अंतिम संस्कार जैसी सेवाओं को राजनीति में जोड़ने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति एक आशीर्वाद पाने का माध्यम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के महापौर महेश कुमार ने आज राजधानी में कुरैश नगर वार्ड में आयोजित तबलीगी इंतजमा कार्यक्रम के लिए सफाई व्यवस्था और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर ने अधिकारियों को आयोजन के दौरान ईदगाह के आसपास की सड़कों और गलियों की सफाई के लिए पर्याप्त सफाई कर्मी लगाने और ईदगाह के आसपास की सड़कों की तत्काल मरम्मत के भी निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में नव निर्मित सड़क सह रेल वाहन का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि ये रेल मशीनरी मोटर ट्रॉली सुविधा के आधुनिकीकरण पर रेलवे कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ट्रैक के रखरखाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहले की मोटर ट्रॉली सुविधा दशकों पुरानी थी।
ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए मोटर ट्रॉली की व्यवस्था है, कई दशकों पुरानी है। उसमें मॉडर्नाइजेशन कैसे किया जाए, डिटेल चर्चा से निकला कि हमें एक रोड कम रेल व्हीकल बनाना चाहिए, तो ये एक नया इनोवेशन किया गया है।
रेल के व्हील हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊपर रहते हैं, ट्रैक पे जब चलेगी, पटरी पे जब चलेगी ये गाड़ी,
साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन नामक पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कल से शुरू हो रहा है। इस मेले के दौरान साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन राजधानी के रविंद्र भवन परिसर में होगा। इस पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रख्यात अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजनयिक नवतेज सरना द्वारा किया जाएगा। इस मेले में 40 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे। मेले में पुस्तक प्रेमियों के लिए प्रवेश प्रतिदिन सवेरे 11 बजे से रात 8 बजे तक होगा। ये पुस्तक मेला इस महीने की 15 तारीख तक चलेगा। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आज आयुष्मान भारत योजना को राजधानी में लागू करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य लाभ योजनाओं में से एक है, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार राजधानी में लागू नहीं होने दे रही।
आयुष्मान भारत लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ बेनिफिट स्कीम्स इन द वर्ल्ड व्हिच गिव्स 5 लाख रुपी फ्री हेल्थ कवर टू एवरी सिंगल बेनिफिशियरी।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अन्य व्यवस्थाओं अर्थव्यवस्थाओं के लिए केवल उपभोक्ता बाजार नहीं बनना चाहता। नई दिल्ली में आज भारत की वैश्विक उदय को बढ़ावा विषय पर भारत एट 100 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक समूह और उद्योग न केवल अपने बाजार के लिए बल्कि अपनी प्रतिभा के लिए भी भारत आ रहे हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन के साथ स्वस्थ व्यापार संबंध चाहता है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस से आयात के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यूरोपीय देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ एक विश्वसनीय भागीदार हैं, जिसकी भारत में कमी है। उन्होंने इस बात पर महत्व दिया कि पिछले कुछ वर्षों में रूस का व्यापार पश्चिम से हट गया है। भारत औषधि, समुद्री और कृषि में अपने व्यापार में सुधार करने के लिए रूसी नेतृत्व पर दबाव डाल रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के रखरखाव कर्मियों ने आज रिकॉर्ड समय में मोती नगर और कीर्तिनगर के बीच प्रभावित ब्लू लाइन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बहाल कर दिया। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि मोतीनगर और कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन के बीच कुछ शरारती तत्वों द्वारा कथित तौर पर केबल को क्षतिग्रस्त करने के बाद ब्लू मेट्रो लाइन प्रभावित हुई थी। DMRC ने बताया कि मरम्मत कार्य करने के लिए 20 कर्मियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया और दोपहर 1 बजे प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया। कुल 140 मीटर केबल क्षतिग्रस्त हो गई थी और इन कर्मियों ने केवल 30 मिनट के रिकॉर्ड समय में मरम्मत का काम पूरा कर दिया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखंड साहू ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इंटरैक्टिव डिस्पोजल ऑफ लैंड इन्फॉर्मेशन IDLI प्रणाली से लंबित मामलों की मासिक आधार पर नियमित निगरानी की जाती है। लोकसभा में श्री साहू ने कहा कि IDLI प्रणाली और नागरिक सेवा पोर्टल की ऑनलाइन कार्रवाई से प्रक्रिया और सुगम बन गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि DDA विकासात्मक मानकों के उल्लंघन की निगरानी करता है और इसके अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिल्पकला के जीवंत प्रदर्शन, तकनीकी सत्र, क्रेता विक्रेता बैठकें और निवेश सम्मेलन आयोजित होंगे।
इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा तथा सिक्किम की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और शिल्प संपदा का प्रदर्शन किया जाएगा। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण ग्रामीण हाट बाजार, जिसमें पूर्वोत्तर के 320 किसान अपनी उपज और कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा ने आज राजधानी के निवासी कल्याण संघ RWA के साथ बैठक कर पार्टी के संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे। इस अवसर पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जनता के साथ विचार विमर्श और उनके सुझावों के बाद जो संकल्प पत्र तैयार होगा वो भाजपा का नहीं बल्कि जनता का संकल्प पत्र होगा। वहीं संकल्प पत्र समिति के संयोजक सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों के साथ बैठकर उनके सुझाव लेगी और उसके बाद चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी। बैठक में पार्टी नेता कैलाश गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, सुश्री मीनाक्षी लेखी, अरविंदर सिंह लवली, अभिषेक टंडन और प्रवीण शंकर कपूर भी शामिल थे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये सर्वेक्षण जारी करते हुए कहा कि देश के डेटा परिदृश्य को समझने में एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण मेक इन इंडिया पहल, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं और कौशल विकास से संबंधित रणनीतियों को आकार देने में सहायक रहा है। सरकार ने कहा है कि डेटा की लागत मार्च 2014 में 269 रुपए प्रति गीगाबाइट से जून 2024 में घटकर 8.31 रुपए प्रति गीगाबाइट हो गई है। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासामी ने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में दूर संचार क्षेत्र में कई सुधार किए हैं और इससे बड़ा बदलाव आया है।
संचार राज्य मंत्री पेमासनी चंद्रशेखर ने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में कई सुधार किए हैं और इससे बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या मार्च 2014 में 25 करोड़ 15 लाख थी, जो इस वर्ष जून में बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो गई। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से 5G सेवाओं की शुरुआत की है। श्री शेखर ने सदन को ये भी जानकारी दी कि दूरसंचार विभाग ने फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित प्रणाली विकसित की है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए संचार साथी पोर्टल विकसित किया है, जिस पर संचार संबंधी धोखाधड़ी और अनचाहे वाणिज्यिक संदेशों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। नागरिकों की शिकायत और विश्लेषण के आधार पर 1 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं, 2,809 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए हैं और 6,261 व्हाट्सएप अकाउंट बंद किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार दूरदर्शी नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल्यों और नैतिकता की रक्षा तथा वंचितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में श्री मेघवाल ने बताया कि 2017 में नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना जैसी योजनाओं और पहलों के माध्यम से दुनिया को डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान और आदर्शों से अवगत कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 164 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ इलाकों में ये 200 से अधिक हो गया। दिल्ली के शादीपुर स्टेशन पर 261, नेहरू नगर में 240, मुंडका में 224 और दिलशाद गार्डन में वायु गुणवत्ता सूचकांक 203 दर्ज किया गया। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के प्रतिबंधों को दूसरे चरण में बदलने की अनुमति दी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे परिसर में नवनिर्मित सड़क सह रेल वाहन का निरीक्षण किया। साहित्य अकादमी के पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कल से शुरू और 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।